मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। घूमते हुए सुमाली पहुंच गए हैं ऋषि विश्रवा के आश्रम। पता नहीं था सुमाली को कि वो कहां जा रहे हैं, वो तो बस पहुंच गए। विश्रवा ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे और स्वयं विश्रवा ऋषि भी सप्तर्षियों में एक। मेरे राम, सप्तर्षियों के बारे में जब भी आप खोज करेंगे, इनके क्रम और नामों में अंतर मिलेगा। जैसे कहीं ऋषि अगस्त सप्तर्षियों में है और कहीं नहीं। और कैसी बढ़िया बात है कि पुलस्त्य ऋषि भी सप्तर्षियों में है और विश्रवा भी सप्तर्षियों में है, यानी बाप और बेटा दोनों सप्तर्षि में। ऐसा अद्भुत उदाहरण दूसरा नहीं। ऋषि पुलस्त्य के जो पुत्र हैं और स्वयं मेधा और शक्ति के कारण इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। कौन दर्शन कर रहा है? सुमाल। ऋषि पुलस्त्य और भी महत्वपूर्ण है, यानी विश्रवा के पिता, क्योंकि वो ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक। दक्ष प्रजापति के दामाद और रुद्र के साधु। उलस्य की पत्नी हविर्भुवा थी। हविर्भुवा, पुलस्त्य के 2 विवाह हैं। पुलस्त्य का 1 विवाह वैशाली की राजकुमारी इडविला से भी हुआ है और इडविला के ही पुत्र हैं विश्रवा। विश्रवा का आश्रम नर्मदा नदी के किनारे है, यानी उनका क्षेत्र मध्य प्रदेश में आ जाता है। विश्रवा के बड़े भाई ऋषि अगस्त और भाभी विदुषी लोपामुद्रा, अद्वितीय तेज ऋषि विश्रवा के पूरे व्यक्तित्व में प्रदीप्त था। सुमाली देख रहा है कि ऋषि विश्रवा अग्निहोत्र कर रहे हैं और उनके साथ विश्रवा का एक पुत्र वैश्रवण, जिसे कुबेर भी कहेंगे, वो भी यज्ञ में सहभागी। वैश्रवण के व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण, जिसको अनुभव किया सुमाल। चमक दमक का आकर्षण तो कोई भी अनुभव कर लेता है, लेकिन आत्मा के आकर्षण को जो अनुभव कर लेता है, श्रेष्ठ माना होता है, उत्कृष्ट माना होता है। ये तो राक्षस है सुमाली, इसके अंदर तो ऋषि कुल का भी रक्त है, यानी गंधर्वों का भी रक्त है और राक्षसों का। हाँ, सारे लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं आत्मा के तेज का। अरे राम, अष्टावक्र आए थे जब जनक के दरबार में। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े ऑक्टोपस जैसे लगते थे देखने में। आए जनक के दरबार, वही विदेहराज जनक, सीता के पापा, वही आए। सारे दरबार में बैठे हुए लोग देखकर उनको हंसने लगे। जनक के चेहरे पर व्यंग नहीं था, जनक उस तेज का अनुभव कर रहे थे जो अष्टावक्र के अंदर। अष्टावक्र पूछते हैं जनक से कि हे जनक, तेरी सभा में क्या सारे चर्मकार बैठे हुए जो केवल मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, मेरी आत्मा तक नहीं पहुंच पा? देखा नहीं। जनक पहुंचे थे अष्टावक्र की आत्मा तक, और जो संवाद है अद्भुत संवाद है, अष्टावक्र गीता है पूरा। इसमें ओशो ने तो इस पर जो विवेचना की है वो क्या, ऐसे ऋषि बालक को देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं सुमन। ये बालक वैश्व अध्ययनशील और आत्म केंद्रित मात्र नहीं था। ये बालक, ये जो दिख रहा है बालक ऋषि का, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इसके शरीर से अवैयक्तिक संचार हो रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बता रहा है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा जो अभी केवल बच्चा दिख रहा है, ये आगे चल करके जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करेगा। ये केवल आश्रम में बैठ करके हवन नहीं करेगा। सामान्य व्यक्ति के सामने बहुत कुछ गुजर जाता है, घट जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि क्या है। वो तो कहीं ना कहीं डूबा होता है और जान ही नहीं पाता, इसीलिए तो वो कॉमन मैन है। लेकिन जो उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, उसके अंदर काल दृश्य दोनों से, दोनों का रिफ्लेक्शन आता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है उसके अंदर, काल से भी समय से भी। और कहे से उत्पन्न होती है, काल से, दृश्य से, व्यक्ति से, प्रकृति से। प्रकृति की अंतर ध्वनि को जो पहचान लेता है, वही तो अद्भुत होता है। दुनिया जानती है, देखती चली आ रही थी कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है, कोई भी सामान गिरता है वो ऊपर से नीचे गिरता है मेरे राम, सब जानते थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार कोई नहीं कर पाया। ये न्यूटन ने देखा कि ये गिरा ऊपर से सेब नीचे, सबने देखा गिरा, लेकिन वैज्ञानिक ने कैसे देखा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यही तो दृष्टि है, और जो इस दृष्टि का मालिक होता है वही दृष्टा होता है। वैश्रवण को देखकर सुमाल के अंदर एक क्लिक आई, एक चमक पैदा हुई, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना, छठी इंद्रिय को जागृत, पहचान लिया उसने, अपना लक्ष्य पकड़ लिया। बड़ी प्रसन्नता हुई सुमाली को, उसे अपनी दोनों समस्याओं का निराकरण एक साथ मिल गया, एक साथ मिल गया, एक साथ। सुमाली की कल्पना में वैश्रवण जैसा अपना दौहित्र, देवता, नाती, बेटी का बेटा साकार हो उठा, जो अपने तेज शक्ति से लंका पर फिर से अधिकार करेगा। पूरी कल्पना स्पष्ट हो गई, पूरा रोड मैप क्लियर हो गया सुमाली के सामने। सुमाली खुशी खुशी लौटा अपनी कंदरा में, और पूरी थीम समझाई अपनी बेटी के कसी। अब सुमाल अपनी नव यौवना बेटी के कसी को प्रयोग करेगा अपने उद्देश्य की पूर्ति। के कसी को भेजा के कसी को ऋषि विश्वा के पास, एक किसी को भेजा सुमाली ने, बाप ने भेजा बेटी को कि जाओ बेटी और ऋषि से प्रणय निवेदन कर, उसकी पत्नी बन जाओ। पहुंची के अग्निहोत्र से उठे थे उस समय ऋषि, अद्भुत तेज था उनके ऊपर। संध्या की वेला थी, अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था सूर्य। ये जो संधि वेला है इसी को तो गोधूली कहा गया, इसी को तो गोधूली कहा गया। गायें जब लौटती हैं ग्राम में वन से, तो उनके खुरों से उड़ती हुई धूप से जब आसमान पूरा छा जाता है, दिखता कुछ नहीं है, आहट होती है केवल, तो उसे कहते हैं गोधूल। गोधूल का समय है। मानव में काम का अवतरण का ये काल होगा। जो काम है, कामदेव, वो इसी काल क्षण से अपना प्रभाव प्रारंभ करते हैं मानव देव। एकसी नवयौवना सौंदर्य की उपासिका, कमनीयता का साक्षात अवतार खड़ी है सामने ऋषि के और प्रणय निवेदन कर रही। दो बातें एक साथ हो रही, एक तो ऋषि स्वयं मोहित हो गए हैं केकसी, और आर्यों की एक परंपरा थी कि किसी स्त्री का प्रणय निवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता। हाँ, अस्वीकार नहीं किया जाता, और कभी कोई अस्वीकार कर भी देता था, आगे प्रसंग है, आप भी जानते हैं मेरे राम, ना तो समवीर नमो सम नारी, आएगा प्रसंग ये सामने। लेकिन यहां, और वो प्रसंग जो है वो अलग परिणाम देगा, ये प्रसंग अलग परिणाम दे रहा है। जुए का ऑफर, ऑफर ऑफ गेम्बलिंग, द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव, प्रणय का प्रस्ताव, और क्षत्रिय के लिए युद्ध का प्रस्ताव अस्वीकार्य नहीं होता है। याद करो मेरे राम कि एक बार सब कुछ हार गए थे जब युधिष्ठिर उस द्यूत क्रीड़ा में जिसे चला रहा था शकुन, गांधार का राजकुमार, और द्रौपदी ने जब वो सब कुछ वापस पा लिया था और चल दिए थे वापस अपने राज्य की ओर, तब शकुनि ने दूसरा प्रस्ताव भेज दिया था द्यूत क्रीड़ा का, और युधिष्ठिर फिर आ गए थे और उसके बाद वनवास हुआ। ये परंपरा थी कि ये प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर, तो प्रणय निवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस समय एक विवाह का या एकल विवाह का कोई नियम या मूल्य भी नहीं है। संस्कृतिकरण चल रहा है, नए मूल्यों का समावेश तो हो रहा है, संधि काल है। और मैंने पहले भी कहा है मेरे राम कि ऋषि का अर्थ ब्रह्मचारी नहीं है, ऋषि का अर्थ मुनि नहीं है, ऋषि बाबा जी नहीं होते। ऋषि तो मर्यादित भोग करते हैं। बस ऋषि और राक्षस में अंतर क्या है कि ऋषि मर्यादित भोग करता है और राक्षस केवल भोग करता है, मर्यादा उसके शब्द कोश में नहीं। और इस प्रकार राक्षस कन्या केकसी का विवाह ऋषि विश्रवा से होता है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव।
भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूसन तोर किए अन्यथा होई नहीं विप्रसाप अति हो।
मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। ऋषि विश्रवा और केकसी के पुत्र का जन्म हो और शिशु रूप से ही बालक बड़ा विचित्र, दस ग्रीवाएं यानी दस गर्दने और दस शिर थे इस बालक, इसलिए विश्रवा ने उसका नाम दशग्रीव या दशानन रखा। विभिन्न प्रकार की शारीरिक अपरूपताएं इस बालक में थी, बड़ा विकृत शरीर, लेकिन तेज बुद्धि और मेधा की तीक्ष्णता इस बालक में विद्यमान। पारिवारिक स्नेह के वातावरण में पलने लगा दशान, जो सह माता थी देवर्णनी, जो ऋषि भरद्वाज की बेटी थी और वैश्रवण की मां थी, वो भी अपना पूरा स्नेह दशानन को देती, पूरा स्नेह देती थी। बालक को स्नेह देने में कोई कंजूसी नहीं। दशानन के बाद केकसी ने कुंभकर्ण, शूर्पनखा और विभीषण को भी जन्म दिया। जो पहली तीन संतानें हैं दशानन और कुंभकर्ण और शूर्पनखा, इन तीनों में तमो गुण की प्रधानता, तम रज तम सत तीन, सत तम रज तीन गुण है। तम गुण की विशेषता है कि जो तम गुणी होता है वो क्या कहता है मेरे राम, वो कहता है कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, वो छीन लेता है दूसरे से जो उसके पास होता है, वो तम गुण। तो ये तम गुण वाले हैं, तामसिक विकृतियां इनके अंदर है। जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो भी तामसी वृत्ति है, लेकिन विभीषण में रज गुण है। ये गलती मत करना मेरे राम, बहुत से लोगों ने की है जिन्होंने विभीषण को सतगुण वाला समझ लिया। विभीषण सतगुणी नहीं है। सतगुणी क्या करता है, सतगुण क्या है मेरे राम, कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है और मेरा भी तेरा है। जो अपने हिस्से का भी दूसरे को दे दे वो सतगुण। विभीषण नहीं है, अगर होता तो लंका का राजा कैसे बनता। ये रजगुण है। रजगुण में क्या है, मेरा मेरा है तेरा तेरा, इसलिए सत और तम का मिश्रण है रजगुण। सफलता का सूत्र भी रजगुण में है, न सत में है न तम में। अगर तम गुण ज्यादा होगा तो कानपुर की सिविल लाइंस में पहुंच जाओ, जेल है ना वहां, इसलिए पहुंच जाओ। और सतगुण होगा तो गंगा के कछारों में जाके कमंडल लेके बैठ जाओ। तो चाहिए क्या? रज, ये सफलता का आधार। और विभीषण में रज, सुमाली का ऐसा नियोजन था, आपने देखा कि उसके दौहित्र का जन्म उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि परिवार में हो गया। इससे बड़ा ऋषि परिवार कोई था ही नहीं, क्योंकि जो कश्यप ऋषि हैं जिनके नाम पर कश्मीर है, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है। ऋषि पुलस्त्य के परिवार से कई गुना परिवार है, लेकिन उनके परिवार में विसंगतियां बहुत हैं, उनके पुत्रों में विसंगतियां बहुत हैं। अभी आगे चर्चा करें। अब दशानन एक बात देख रहा है, बड़ा हो रहा है। अब एक बात देख रहा है दशानन, किस परिवार में उसे पर्याप्त प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, स्नेह मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। वैश्रवण की तरह से दशानन को अपने पितामह महर्षि पुलस्त्य से अध्ययन का अवसर भी नहीं मिला है। ऋषि पुलस्त्य ने इनकार कर दिया है कि वो दशानन को नहीं पढ़ाएंगे। केकसी ने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन असफलता हाथ लगी। दशानन को उसके पिता ही शिक्षा दे रहे हैं। दशानन वंचित रह गया है अपने दादा महर्षि पुलस्त्य के तेज। ये सब देख करके सुमाली भी चिंतित था, क्योंकि लंका को वापस पाने के लिए केवल राक्षसी शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, ये जानता है सुमाली। इस कार्य के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी, जो देवताओं के साथ और समर्थन से ही संभव। सुमाली को लगने लगा कि उसने जो योजना बनाई थी और योजना को परियोजना में परिवर्तित किया था, प्लान वॉज इंप्लीमेंटेड इन प्रोजेक्ट दैट वॉज गोइंग टू बी फेल्योर, तो असफल हो रहा है सारा। और दशानन देख रहा है अपनी उपेक्षा और सोच रहा है कि राक्षस माता की संतान होना इतना बड़ा अपराध क्यों हो गया। रावण को लगता था कि उसके भाई बहन की प्राकृतिक विकृतियों के कारण परिवार में निगेटिविटी, नकारात्मकता बढ़ गई। फिर भी रावण को लगता है, दशानन को लगता है कि देवों और राक्षसों में विवाह तो पहले भी हुए हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव तो नहीं। दशानन सोच रहा है कि इंद्र की पत्नी शची भी राक्षस राज कुलोम की बेटी है, और शची की जो संतानें हैं इंद्र से, जयंत और जयनी, उनका जो कैटेगरी है वो तो देव श्रेणी है, और रावण की जो ताई है लोपा मुद्रा वो भी अनार्य राजा जो विदर्भ के हैं उनकी बेटी है। ऐसे कई प्रश्न दशानन को अशांत और कुंठित रखते हैं। दशानन परेशान है, खोज रहा है इन प्रश्नों के उत्तर। कैसे, कारण क्या है, व्हाट के साथ वाई, जिसे व्हाट के साथ वाई पता लग गया वही तो ज्ञान है। पढ़ना पढ़ के रट लेना ज्ञान नहीं। हाँ, बुद्ध का जो उपदेश है, बुद्ध का जो ज्ञान है, उसका आधार क्या है, प्रतीच समुत्पाद, जिसे पाली में कहा गया पटीच समुत्पाद। और प्रतीच समुत्पाद क्या है, कार्य के साथ कारण को जान लेना। जिसने अपने जीवन में ये जान लिया वो तो उत्कृष्ट होकर के रहेगा, उत्कृष्टता से परे जाएगा, बियॉन्ड एक्सीलेंस जाएगा। मानव है मेरे नाम, मानव है मेरे नाम।
रावण नाम वीर परिवंडम, रावण नाम वीर परिवंडम, पिपार हित सब हिंसक पापी, बरनी न जाए विश्व परितापी, जय श्री राम।